हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ड्राइवर और आदित्य के बीच में जो भी बातें हुई, सुनैना ने वो सारी बातें सुनी, लेकिन उस वक्त उसने कुछ भी पूछना बिल्कुल ठीक नहीं समझा। और आदित्य का हाथ पकड़े हुए वो उसे होटल रूम में आए और उसने देखा कि उसे होटल रूम का स्टाफ भी काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहा था। वो सारे लोग एकदम रोबोट की तरह बर्ताव कर रहे थे। किसी ने उनसे कुछ भी नहीं बोला, यहाँ तक किसी ने उनका वेलकम भी नहीं किया। और उनके पास पहले से ही रूम की चाबी थी और उनके पास कोई भी सामान नहीं था, क्योंकि वो सारा सामान उनकी गाड़ी में ही रह गया था। सिर्फ उन दोनों के फ़ोन और सुनैना के पास उसका छोटा सा पर्स ही था। वो लोग वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े जहाँ पर रिसेप्शन डेस्क थी, तो उसे वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, सर, आप दोनों का फ़ोन आपको यहाँ पर जमा करना होगा। क्यों, मोबाइल फ़ोन से तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आदि क्या बोल रहे हैं ये लोग? सुनैना ने आदित्य का हाथ कसकर पढ़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा। तो आदित्य ने बहुत ही बेबसी से उसकी तरफ देखकर एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं, दे दो अपना फ़ोन, मैं भी दे देता हूँ। लेकिन क्यों, कोई वजह तो होनी चाहिए, कोई सिक्योरिटी रीज़न या कुछ ऐसा? क्यों कर रहे हैं ये लोग और हम क्यों उनकी बात माने? इसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर हम किसी से कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? सुनैना ने मना करते हुए कहा, और अब तक उसने अपने बैग से मोबाइल फ़ोन नहीं निकाला है। सुनैना इतनी देर से ये सारी बातें बोल रही है, लेकिन उसकी किसी भी बात का वहाँ मौजूद किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया है और वो सब बस एक तक आदित्य की तरह ही देख रहे हैं। और तभी आदित्य ने अपने पॉकेट से मोबाइल फ़ोन निकाला और उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया और फिर सुनैना की तरफ देखकर उसे इशारा करते हुए बोला, सोना, ज़िद मत करो, ये इन सब बातों का वक्त नहीं है, दे दो मोबाइल फ़ोन, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इतना बोलते हुए आदित्य ने सुनैना का हाथ अपने हाथों में लेते हुए पलके झटक कर उसे इशारा किया, तो सुनैना ने भी आखिर अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर उस आदमी के हाथ में थमा दिया। लेकिन वो उसे गुस्से से घूर कर इस तरह से देख रही है जैसे कि वो अभी उसे कच्चा ही खा जाएगी। आदित्य और सुनैना एक साथ ही वहाँ से रूम नंबर 516 की तरफ बढ़े, जिसकी चाबी पहले ही आदित्य के पास है। अब वो दोनों कॉरिडोर में एकदम अकेले हैं और सुनैना को लगा कि यही एकदम सही मौका है आदित्य से कुछ भी पूछने का, इसलिए उसने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ा और उसके सामने आती हुई बोली, आदि, अब बताओ मुझे क्या चल रहा है ये सब और क्यों आए हम यहाँ पर और उन लोगों ने हमारे मोबाइल फ़ोन क्यों ले लिए? इसके अलावा किसी फ़ोन कॉल की बात हो रही थी, किससे मिलना चाहते हो तुम, कुछ बताओ मुझे। सुनैना की बात सुनकर आदित्य ने भी अपने इधर उधर चारों तरफ देखा और उसे पता है कि सुनैना इस बात को लेकर कितनी ज़्यादा टेंशन में है और इतनी देर से परेशान है। पूरे रास्ते ही वो उसे इस बारे में पूछती रही, लेकिन जब इनकमिंग कॉल ऑन होने की वजह से वो उसे कुछ बता नहीं पाया। और फिर ड्राइवर और वहाँ पर वो सारे लोग थे, लेकिन अभी वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो आदित्य को भी लगा कि ये सही मौका है, नहीं तो फिर सुनैना इस तरह से कन्फ्यूजन में रहेगी तो उसकी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है ज़्यादा सोचने की वजह से। इधर उधर चारों तरफ देख कर कन्फर्म करते हुए आदित्य ने धीमी आवाज़ में कहा, सोना, वो मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन काफ़ी दिनों से कोई लड़की है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे बार बार कॉल मैसेज कर कर परेशान कर रही थी। पहले मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जब 10-12 नंबर से उसने बार बार मुझे मैसेज और कॉल किया, तब मैंने उसका नंबर अरविंद को दिया था पता लगाने के लिए, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाया क्योंकि उसकी लोकेशन आउट ऑफ इंडिया अलग अलग जगहों से आ रही थी। मुझे लग रहा है कल पार्टी में भी वो लड़की शायद आई हुई थी और उसने मुझ पर नज़र रखी हुई थी, और आज जब हम घर वापस जा रहे थे तभी उसका मुझे कॉल आया और वही मुझे ये सब कुछ करने के लिए बोल रही है और उसने मुझे धमकी दी है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो तुम्हें कुछ भी कर सकती है और हमें पता है मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दे सकता, बस इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, सॉरी, मैं बहुत मजबूर हूँ इस वक्त। सुनैना, आई होप तुम मेरी बात को समझोगी। इतना बोलते हुए आदित्य बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया क्योंकि वो इस वक्त सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है और आगे क्या होने वाला है ये उसे भी नहीं पता है। आदित्य को इस तरह से इमोशनल देखकर सुनैना उसके गले लग गई। आदित्य ने भी उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे गले से लगा लिया। तभी सुनैना धीमी आवाज़ में उसकी बात का जवाब देती हुई बोली, आदित्य, इतना मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और सब कुछ ठीक होगा, हम उसके बारे में पता लगा लेंगे, वो जो कोई भी है अब बच नहीं पाएगी। सुनैना की ये बात सुनकर आदित्य को बहुत अच्छा फील हुआ और उसे थोड़ी हिम्मत भी मिली और वो दोनों कमरे में जाने से पहले इसी तरह से गले लगे हुए हैं और वो कुछ देर बाद एक दूसरे से अलग होना। आदित्य कमरे का दरवाज़ा खोलना ही वाला था तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लेकर आवाज़ लगाई, मिस्टर आदित्य सिंघानिया। वो आवाज़ बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं है और उन दोनों को इस तरह यहाँ किसी के भी अपने पीछे खड़े होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने ही एकदम चौंक कर पीछे मुड़ते हुए देखा। एक आदमी जिसने कि एकदम नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे वो वहाँ पर आया और उसके हाथ में कुछ था, शायद कोई मोबाइल फ़ोन या फिर वो दिखने में वॉकी टॉकी जैसा लग रहा है। दूर से देखने पर आदित्य और सुनैना को समझ नहीं आया, लेकिन वो आदमी जब उसके करीब आया तो आदित्य देखते हुए समझ गया कि वो कोई मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि वॉकी टॉकी के जोड़े में से एक है। उस आदमी ने आदित्य की तरफ वो बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लिए। और आप लोग इतनी देर से कमरे के अंदर क्यों नहीं पहुंचे? अब तक यहाँ पर क्यों खड़े हैं? सुनैना की उस आदमी की बात पर तुरंत ही एकदम उखड़ते हुए कहा, हमारी मर्जी, हम जब भी जाएं। तुम होते कौन हमें इस तरह से कुछ भी कहने वाले? उसके हाथ में पड़ी हुई उसे वॉकी टॉकी को देखते हुए आदित्य ने कहा, सोना क्या बोल रही हो? अरे हम दोनों बस जा ही रहे थे। और ये क्या है? उस आदमी ने अपने हाथ में पड़ा हुआ वो सामान आदित्य की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि क्या है? इस पर तुमसे बॉस को बात करनी है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। और अब तुम दोनों रूम के अंदर जाओ। अपने हाथ में पड़ा हुआ वो आदित्य के हाथ में थमा दिया और आदित्य ने भी उसके हाथ से वो ले लिया। और धीरे से अपना सिर हिलाते हुए उसने सुनैना के कंधे पर हाथ रखा और फिर वो दरवाजा खोला और वहां से अंदर जाने लगा। तब तक पीछे मुड़कर उन दोनों ने देखा तो वो आदमी अब वहां पर नहीं था। उन दोनों को ही काफी अजीब लगा कि वो आदमी से एकदम अचानक से गायब हो गया, जबकि उन दोनों में से किसी ने भी उसे किसी तरफ जाते हुए नहीं देखा। कहाँ चला गया वो अचानक से? गायब हो गया क्या? और आदि, मुझे नहीं लगता हमें इस रूम के अंदर जाना चाहिए, मुझे कुछ बहुत अजीब सा फील हो रहा है, सुनैना ने आदित्य की आस्तीन पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहा। सच कहूं तो कुछ पॉजिटिव वाइब तो मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए चलो। इतना बोलते हुए आदित्य सुनैना के साथ रूम के अंदर आया। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और तभी उसके हाथ में पड़ी हुई उसे वॉकी टॉकी की रेड लाइट चलने लगी और उसमें से कुछ आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर आदित्य सुनैना दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दूसरी तरफ
स्वीटी, आदित्य सुनैना के घर में अकेले बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो पिछले 5-6 घंटे से सुनैना और आदित्य के घर वापस आने का इंतजार कर रही है, लेकिन वो दोनों अब तक नहीं आए। जबकि जब उसकी सुनैना से आखिरी बार बात हुई थी 7-8 घंटे पहले, तब सुनैना ने बोला था कि वो दोनों घर से निकल गए हैं और बस 1 घंटे में घर वापस आ जाएंगे। शाम से उन दोनों का इंतजार करते हुए अब लगभग रात हो गई है, इसलिए स्वीटी और भी ज्यादा परेशान है। और इसके अलावा वो बार बार उन दोनों का नंबर डायल कर रही, लेकिन फिर भी उन दोनों का ही नंबर नहीं लग रहा और स्वीटी की उनसे बात भी नहीं हो पा रही। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान है। गीता भी उसके साथ वहां पर बैठी है, वो भी आदित्य और सुनैना के लिए परेशान है, लेकिन वो दोनों ही फिलहाल ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही। तभी स्वीटी का मोबाइल फोन एकदम से रिंग हुआ और उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बजने वाले थे, लेकिन फिर भी उसने वो कॉल रिसीव कर लिया, ये सोचकर कि शायद आदित्य सुनैना में से किसी का कॉल हो, क्योंकि एकदम अननोन नंबर से कॉल था। हेलो, कौन? स्वीटी ने मोबाइल फोन अपने कान से लगाते हुए पूछा। और तभी दूसरी तरफ से जानी पहचानी सी आई हुई आवाज उसके कान में पड़ी। स्वीटी, जाग रही हो अब तक? एक काम करो, सोनू से मेरी बात करवा दो। एक्चुअली में मेरा पर्स कल रात वहीं पर ही छूट गया था, तो अगर उसे मिले तो उसमें मेरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और आईडी कार्ड है। ये नैना की आवाज़ थी और वो थोड़ा सा टेंशन में ही इस बारे में बात कर रही थी, लेकिन स्वीटी इस वक्त उससे कहीं ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि उसकी तो खुद ही आदित्य सुनैना से बात नहीं हो पा रही, तो वो भला नैना की उनसे क्या ही बात करवाती। लेकिन इस तरह से नैना का फ़ोन आने से स्वीटी को काफ़ी अच्छा फील हुआ और उसकी बात का जवाब देते हुए वो बोली, दी, कैसे करवाना मैं आपकी बात उनसे? स्वीटी बोल ही रही थी तभी नैना ने बीच में बोला, क्यों, वो दोनों सो गए हैं क्या? कोई बात नहीं, कर सो गए हैं तो तुम कल सुबह बता देना या फिर सुबह ही बात करवा देना, क्योंकि सोना का फ़ोन लग नहीं रहा है। उसके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नैना की बात का जवाब देते हुए स्वीटी ने उसे बताया, अरे नहीं नहीं, सोए नहीं है, और सोएंगे तो तब जब वो दोनों घर वापस आएंगे। भैया और भाभी दोनों में से कोई अब तक घर वापस ही नहीं आया, तो कैसे मैं आपकी उनसे बात करवाना? मैं खुद कब से उन दोनों का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मेरी भी उनसे बात नहीं हो पा रही और अब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। स्वीटी की ये बात सुनकर नैना एकदम ही चौंकते हुए बोली, क्या मतलब अभी तक घर वापस नहीं आए? कहाँ से हो सकता है वो दोनों वहां पर बंगले में ही रुक गए हों या ऐसा कुछ? नहीं, वो पुश्तैनी बंगले के केयरटेकर भवानी काका से मेरी बात हो गई है, वो लोग शाम होने से पहले ही वहां से निकल गए थे, स्वीटी ने अपनी तरफ से क्लियर करते हुए कहा। तो अब उसकी ये बात सुनकर नैना भी टेंशन में आ गई और इस बारे में सोचने लगी। क्रमशः